विमलाया नमो महाराय कृष्णते मंत्रदायते कृष्णाय कृष्णते संसन्ने गोविंदस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते भोगे गुरु राधा कांतनमस्तु सप्त कांचन गंगी राधे वृंदावन सई ंदरिकेतवगणेशो मंदेतर ृंदारण्यवासी गौरचंद्राय राधिकाय श्रीचैतन्य मनोवीतले स्वयं रूप प्रव्यजनो कल के चैतन्य से राय रामानंद संवाद को हम लोग आरम्भ कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाया किंतु पहला जो श्लोक है इसके संबंध में जो आरंभ का श्लोक है मैं भूल गया थे वो और फिर से हम लोग श्लोक की गाँव में हम लोग विचार कर वो श्लोक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बतला रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरित सामृत लिखा है, लिखे तो और से लोगों ने कविकर्ण पूर्व ने लिखा है, नूतन दास जी ठाकुर जी ने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, उन्होंने लिखा है और भी लोगों ने इन्होंने सबका सर्विस चरण करके और उसको इन्होंने ग्रहण किया और से भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद और महाप्रसाद के जो भगवान का चर्चित कर रहे हैं वो महा महा महाप्रसाद यदि भक्त लोग इसके ग्रहण कर तो भगवान का लीला चरित्र वृंदावन दास ठाकुर लोचन दास और सब लोग किए हैं जिससे उनका उत्कृष्ट ग्रहण करके और बचे हुए भाग को यज्ञ ग्रहण किया और ये अमृत हुआ। इसे ये महाप्रसाद के रूप में सबके चरणों की उन्होंने वंदना है। बाकी लोगों ने भी चैतन्य चैतामृति लिखा था, उन लोगों के नाम बदल दिए गए और इसका नाम चैतन्य चैतामृति भी हुआ। जीव गोस्वामी के ग्रंथों का, रूप गोस्वामी के ग्रंथों का सबकी पर्यालोचना करने के बाद में ये चैतन्य चैतामृत ग्रंथ ये लिखा। इसमें यह सिद्धांत दार्शनिक और रसिक ये दोनों ग्रंथ है। जिसको समझने के लिए भक्ति नाटक चंद्रिका और कितने ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत है, वेद है, पुराण है, परिषद है, ये सबको जो कड़ रखा होगा ये इसको समझ। यद्यपि बंगला में है क्योंकि इतना भाव गंभीर है कि इसके संस्कृत में टीका हुई और वो टीका जिसको नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने खोज की है, इतनी सुंदर इसकी और गंभीर भावना है। तो इस श्लोक से ही आप लोग इसकी कल्पना करेंगे, साधारण का श्लोक होने पर भी बड़ा गंभीर इसका भाव। जैसे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भगवंती सत्व सत्वम जज्ञान और स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान अद्वै ज्ञान ब्रजेंद्र नंद अद्वै ज्ञान माने क्या, वही अद्वै स्तुति का ये बदला अद्वै बड़ा गंभीर श्लोक है। कितने कितने पृष्ठों में उसकी सब आचार्यों ने टीकाकरण उसकी टीका की और वह ज्ञान के शब्द ही बड़ा गंभीर है, किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं मिला। तो इसमें कह रहे हैं ये सिद्धांत ग्रंथ भी है रस ग्रंथ भी, कृष्ण लीला अमृत है और महाप्रभु जी की लीला उसमें मिला दिया तो उसमें और भरपूर मिला, तो वो रस में सुगंध और उसमें और भी मात्र बढ़ गया। संचार्य रामा विदभक्त कहे थे मेरे तो भक्ति सिद्धांत चयान भूतान गौराख्य रे तई रमुना विस्तीर्ण प्रयास। संचार्य रामा भक्त मेघे संचार्य चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में जाए गोतावरी के तट पर गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस समुद्र है, रस के समुद्र है। रस माने क्या, भक्ति उसके स्वयं और इधर में जगह है तो घर में क्यों किसी इतना बैठो और अब चले तो चैतन्य महाप्रभु रस के समुद्र। अब इसको उपमा के द्वारा समझिए तब ये समझने जल्दी है। समुद्र होता है ये पानी का जल का आधार जितना पानी है सब समुद्र में किसी न किसी रूप में जो कुछ पानी पृथ्वी पर है भूतल पर है वो किसी न किसी रूप में समुद्र का ही पानी है? पानी और है ही नहीं है सब, जहां भी कुछ पानी है वही कैसे उससे पानी से मेघ संचरित होता है तो समुद्र से मेघ होता है और मेघ चारों तरफ विस्तीर्ण होकर के वर्षा करता है और वो पानी सर्वत्र और फिर वही पानी किसी न किसी रूप में समुद्र में आता और फिर मेघ होता है, फिर चारों तरफ वर्षा होती है, फिर नदियों के माध्यम से नालों के माध्यम से किसी न किसी रूप में जरूर आएगा वो समुद्र में। जैसे मान लिया कि हमारे शरीर से पसीना आया और वो पसीना जो आया वो गया कहां कहां किसी न किसी रूप में उसी पर गया है मालूम होता है हमें। तो ये कैसे सूखा सूर्य के ताप से या कैसे हवा के तरीके द्वारा और उसके काम उसमें मिल करके और जो मेघ में मिले फिर वर्षा हुई। यहाँ पर एक बूंद हम पानी गिराएंगे तो ऊपर से नीचे नाली में, नाली में से वहां, वहां से वहां, फिर नालों के माध्यम से गंगा, जमुना से गंगा, गंगा से भी कहीं न कहीं किसी रूप में यहाँ पर से पानी सूख गया तो उसका पेपर कहाँ गया आकाश में, किसी न किसी प्रकार से फिर वो समुद्र में पहुंचेगा जलाधार जहां से निकलता। तो समस्त जितने भी रस हैं, विचार हैं, सिद्धांत सबके उद्गम स्थल कृष्ण है, ये कृष्ण ही चैतन्य महात्मा। तो ये जैसे समुद्र से वाष्प बना और मेघ बना आकाश में गया। अच्छा ये मेघ कैसे बना, वाष्प हुआ कैसे, सूर्य की किरण, बिना सूर्य के किरणों की सहायता से वाष्प नहीं हुआ। और समुद्र भी है और ये सूर्य भी है चैतन्य महापुरुष अपने आप अलक्षित रूप में मेघ बने, मेघ कौन हुआ भक्त उदाहरण मेघ हुआ है और वहां से वर्षा हुई फिर वो पानी समुद्र में गया। और एक प्रोसेस है, यदि यही पानी वर्षा का लिए रोहिणी नक्षत्र में या स्वाति नक्षत्र में पड़े, स्वाति नक्षत्र स्वाति नक्षत्र और वो समुद्र में गिरे जाए तो उसमें शीत घूमने और शंख के मुख खुले होते हैं, वो पानी उनमें जाकर के और पानी पाने से वो शीत में नहीं चल जाए। और वो इसी का पानी ऊपर गया फिर आकाश से फिर लौट करके आया स्वाति नक्षत्र में आया और समुद्र के रहने वाले पीपों में वो पड़ा फिर वो मूर्ति बन गया। सब समुद्र को पास में है रचना, पहले रचना कर नहीं किंतु उसी का पानी स्वाति नक्षत्र में जाकर के ऊपर से फिर आकर के उसमें बन गया और वो पीपों में गया तो हो गया मूर्ति बेस की और सब उसको रत्नालय समुद्र को रत्न का आग। अच्छा ये जो सीप है समुद्र में उसमें उसकी पोटेंसी है रत्नों की, नहानी में है समुद्र के सीपों में उसकी पोटेंसी है, क्यों वही पानी स्वाति नक्षत्र का यदि सातों के ऊपर में पड़े तो वो हो जाता है मणि, हाथी के सिर पर यदि पड़े तो गजमुक्ता हो जाता है, केले में पड़े तो कपूर हो जाता है, गाय के सिर पर पड़े तो वो गोरोचना हो जाता है, मृग के ऊपर में किसी प्रकार से पड़े तो वो मृगनाभि हो जाती है, बांस में वंश लोचन हो जाती है। एक ही पानी एक ही समय में गिरा, अलग अलग वस्तुओं को गिरा, अलग अलग चीजें बेस्ट सभी चीजें, उन सब चीजों में पोटेंसी है लेकिन सहायता हूँ उसी जल की। और ये सिर्फ घोघे भी ये पानी से ही बने, समुद्र के पानी से ही, और अलग से इनकी स्थिति नहीं। इसलिए यहाँ पता है अब इसी उदाहरण को समझो। चैतन्य महाप्रभु रस के सिद्धांत के, रस सिद्धांत यह रस कैसे बनता है, भक्ति में पांच माने गए, शांत दास्य सप्तः वात्सल्य और मध्य। ये जो है ये सब मिलाकर के एक रस समझ। चैतन्य महाप्रभु इन सब के रसों को अच्छी तरह से जानने वाले तो रसम कही है रसो वैश्य। रामानंद इत्यादि भक्त है, भगवान कृपा करके अपने भक्तों में भक्ति रस का संचार करते हैं। ये संचार तीन प्रकार या चार प्रकार से होता है। एक होता है उपदेश देकर, एक होता है हास्त्र, हास्त्र में भीतरी भीतर हृदय में उस भक्त का संचार करते हैं, भक्ति अवस्था। एक होता है दृष्टि से, दृष्टि से शक्ति का संचार कर। ये हास्त्र बाकी है तुमको ये काम हुए, तुमको हृदय में भक्ति का रास्ता करते हैं। एक होता है चैत्य गुण के रूप में हृदय में उस चीज को उत्पन्न कर, जैसे बिल मंगल इत्यादि का ऊपर से दिखाई पड़ता है, कोई साधन भजन वाले से हो गया, ये चैत्य गुण के रूप में हृदय में अपने दया का संचार करके उसमें ये भक्ति रस को संचरित कर। और एक दृष्टि के द्वारा देखा और उसके ऊपर में कृपा हो गई, सब कुछ उसके हृदय में। रामानंद के हृदय में हास्त्र है, भक्तों के ऊपर में हृदय से ही इच्छा की और भक्तों में अपनी भक्ति का संचार कर दिया। संचार करके उनके द्वारा फिर उन उपदेशों को सुना और सुन करके किया, उसी को कहें संचार के रामा विदर भक्त मेघे, भक्त रूपी मेघ अथवा रामानंद ने अपनी प्रेम रस को संचरित किया। तो भक्ति सिद्धांत कया अनुसार, क्या अपने भक्ति के सिद्धांतों को सुनती थी और फिर इन्हीं के द्वारा सुन करके गौगा मेरे कई अमुना बीते उनके मुख से फिर अपने आप सुना और सुन करके पर उसको जाने और ध्यान करके फिर रत्नालय का भक्ति रत्नालय भक्ति के सिद्धांतों के रत्न रूपी आलय हुए। मैं चैतन्य महाप्रभु की बल्कि यहाँ पर एक विचार लोग साधारण रूप में समझते हैं कि महाप्रभु दक्षिण देश में जाकर के रामानंद से प्रश्न और महाप्रभु इसके बाद में सब तत्वों को जाना, यह साधारण बात की सुपरस्त। रामानंद महाप्रभु से अधिक नहीं जानते, रामानंद कौन से कल मैंने बताया था विशाखा जी के, उसमें और भी बातें एक अर्जुनी या गोपी और कुछ ललिता जी का भी अंश करते हैं। ये तीन मिलकर के अर्जुन अर्जुन यहाँ गोपी विशाखा वृंदा का उत्तम ये संग करके कहते हैं कि ये रह रहे हैं। अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण लीला में महाभारत इत्यादि में कृष्ण अर्जुन के साथ थी और भागवत गीता इत्यादि समय की और कृष्ण के सखा के रूप में सब कुछ उन्होंने किया, कृष्ण ने उनके सखा बनकर से सत्कार दिया, किंतु इससे उनकी तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, इसलिए उनकी इच्छा हुई यदि मैं वृंदावन में मेरा जन्म होता और मैं गोपी बनता और गोपियों की कुछ सेवा कर पाता तो हमारा जीवन होता, गोपी भाव से कृष्ण की सेवा। ये किसी प्रकार से सुना उन्होंने कृष्ण के लिए जाऊं कहां से सुना, अपनी मैया से, उनकी मैया कहां ने सुना तुलसी जी, तुलसी जी कृष्ण का के साथ में उनका संपर्क था ब्रज के लीलाओं को और उन्होंने सब कुछ श्रवण किया था और उनका इसके प्रति लोभ था, इसलिए अर्जुन को भी लोभ हुआ और उन्होंने पूर्णिमा जी की कृपा से अर्जुनी गोपी बने और उनकी कुछ सेवा करने की लालसा हुई। फिर इसके बाद उन्होंने ब्रज में कोई राष्ट्रीय चार्मी सम्मिलित हुए कि नहीं ये कहीं कुछ नहीं, बस वहां तक तो वो अर्जुन ही गोपी भी थे, अर्जुन का पृथ्वी भाग और विशाखा जी को विशाखा जी भी कम जानने वाली नहीं थी। तो कृष्णचंद्र मूल है, सब कुछ जानने वाले हैं, समस्त सरसों के बीच से हैं, रस के ये समुद्र है, किंतु एक ही उनमें कमी है, तो वो गए गोदावरी में, उसके पहले जब आविर्भूत हुए थे उस समय तीन बांछाओं की पूर्ति के लिए वो अवतीर्ण हुए, राधाया प्रणय महिमा की दृशा अनया माने पहला राधाया प्रणय महिमा की दृशो, राधा जी की कृष्ण के प्रति कैसा प्रणय है, कृष्ण का राधा जी के प्रति प्रणय है वो कृष्ण को उपलब्धि है, किंतु राधा जी का जो प्रेम है वो प्रणय स्थिति में पहुंच करके कृष्ण के प्रति कैसा उनको उन्मादित कर देता है, इसको राधा जी को कृष्ण उसमें उन्मादित नहीं होते हैं जिसने की राधा जी को उन्माद हो जाता, क्यों हो जाता है, मेरे रूप में कैसा माधुर्य है, मेरे गुरु में मेरी क्रियाओं में कैसा माधुर्य है, जरा सा भी एकदम उन्मादग्रस्त हो जाती है और उस समय उनको कैसा लगता है, कौन सा सुख आनंद उनको प्राप्त होता है, इन तीनों चीजों को जानने के लिए इनकी लालसा राधा जी का भाव दिया और अंगों की कांति लेकर के अवतीर्ण हुई, किंतु जानते तो हैं किंतु अनुभूति नहीं है, अनुभूति के पहले जो कुछ होता है उसको कहते हैं ज्ञान और जब उसकी अनुभूति होती है उसको कहते हैं विज्ञान। कृष्ण सांस रस के विषय है, दास रस के विषय है, सख रस के विषय है, बासंग रस के और मधुर रस के विषय है, आश्रय नहीं है, भक्त लोग इसके अपने अपने रसों से आश्रय होते हैं, विशेष करके राधा जी माधुर्य रस की आश्रय आश्रय है, कृष्ण इस चीज को आस्वादन करना चाहते, ज्ञान तो है किंतु विज्ञान नहीं है, समुद्र है उसमें रत्न नहीं है, ये रत्न कैसे मिलेगा? यदि राधा जी खुद अथवा उनकी विशेष शक्तियां यदि इसको अनुभव करा सके तो ये संभव हो सकता है, उसमें विशेष शिक्षा की जरूरत है। इसलिए ये यहां पर गए गोदावरी के तट में राय रामानंद जी ने राय रामानंद जी से प्रश्न कराएंगे, बतला रहे हैं। उनको ज्ञान तो है किंतु अभी विज्ञान नहीं है कृष्ण को, क्योंकि वो विचार है आश्रय नहीं। इसलिए विशाखा जी को उन्होंने सुना, विशाखा जी ने उस विषय की दीक्षा उनको दी और उन सब विषय को अच्छी तरह से बतलाया, ताकि अनुभूति के साथ में बतलाया, एक एक उदाहरण देकर के शास्त्रों से और साथ साथ में अनुभूति कराते हुए कृष्ण को ऐसी शक्ति देंगे। इसके बाद में से सभी महापुरुष को जानकर के उस अरस में डूब गए और वहां से लड़ करके दम भी जा रहे, इन्हीं के साथ में और संत दामोदर के साथ में उसी का रस का। इसीलिए कहते हैं तब ज्ञातवा उसको जान करके, ऐसी कोई चीज है जो नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं किंतु अनुभूति नहीं है। अब इसके बाद में कृष्ण को अनुभूति दी, जैसे कहीं कृष्ण की बंसी लीला में भी ऐसे सुना जाता है, कृष्ण की बंसी ले लिया और कहती है कृष्ण से हमको बंसी बजाना सिखला दे, अब उनको बंसी बजाने का अधिकार। यहां तक कि कृष्ण ने कहा कि आप इतने छोटे शरीर में इतना बड़ा मन कैसे रख सकती हैं, तो हमको थोड़ा सा मन करना सिखला देंगी, तो तुम हमारे कपड़े पहन ले और मैं आपका कपड़ा पहन ले। उनको कपड़ा पहना करके उनको बना दिया रोटी और अपने बन गई वो, और उनको सिखलाने लगी कि ऐसा कर मैं यहाँ आऊं तो तुम बोलना मैं मुंह इधर करके बैठ जाना, मैं जितना भी मनाऊ तुम मानना मत। अच्छा देखो मैं अब जा रही हूँ, अब आऊंगी मनाने के लिए, किंतु सही तुम मत मान। तो चली गई और थोड़ी देर के बाद में वो आई तो कृष्ण बने हुए गोपी से गिरा दिया और ये मना रहे वो मनती नहीं, सचमुच में ऐसा हो गया कृष्ण को जो सचमुच में भी मन पसंद नहीं। तब राधा जी ने देखा था ये मानते नहीं, पता है मैंने तो तुमको सिखला है मान कर और हमसे ही तुम मान कर रही। इस तरह से सिखला मैंने है ज्ञान से तुम्हें कि
ज्ञान है विज्ञान में,
और इसके द्वारा विज्ञान अर्थात तो उसके द्वारा ये लोग सीखते हैं। इसी तरह से चैतन्य महापुरुष स्वयं रस के समुद्र है, सर्व अंतर्ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, सब रसों को भी जानते हैं, किंतु होने पर भी वो प्रेम के विषय हैं, इसलिए भक्तों के आश्रय में, इसलिए कभी कभी स्वयं भक्त हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं भक्त होकर के भक्त भाव होने से सख्त का भी भाव उसका भी आश्रय का समस्त भक्ति के रसों के आश्रय होकर के सीख करके और उसका क्यों राधा भाव ही नहीं भक्ति सभी का। अब दोनों मिले हैं हम लोग विचार, समुद्र के किनारे बैठे थे, राय रामानंद जी आए गाने बजाते हुए हजार ब्राह्मणों के साथ में, ब्राह्मण लोग सूत्र ये सूत्र कहे और इतने गंभीर और विद्वान और ये बात सन्यासी सूर्य के समान ब्राह्मण बाल और उस पर भी बहुत उच्च कोटि का सन्यासी और इसको आलिंगन करके और दोनों रो रहे हैं, दोनों लोग सोच रहे हैं, ये गाँव नहीं समझ सके उनके दिमाग में नहीं। यही बात थी कि राम लीला में थी, रामचंद्र जी सबरी के यहाँ मिले गए सब ऋषि लोग रामचंद्र जी के यहाँ जा रहे हैं और रामचंद्र जी खुद कहाँ गए सबरी के वहां जाकर उसकी जीव की देर खाई सब ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हुए उन्होंने कहा प्रभु यहाँ एक तालाब है पंपा सरोवर पानी इसका बहुत पहले निर्मल था जब से ये बूढ़ी आई है और हम लोगों ने आश्रम छोड़ाई थी के मारे गुरु जी के पास में आने लगी हम लोगों ने मना किया कि ये इसको यहाँ पर मत बुलाइए तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी उसको कहा कि उसी को हम हरी कथा सुनाएंगे तुम लोगों की सुनने की इच्छा तो सुनो नहीं तो तुम लोग आश्रम से चलेगा तो हम लोग इसी के मारे चले गए और तब से इस सरोवर का पानी गंदा हो गया इसमें कीड़े पड़ गए और पानी पीने लिखे आप कृपा करके इसकी पानी इसका पानी सुंदर स्वच्छ निर्मल कर दी नहीं तो पानी कहीं नहीं मिलता है तब प्रभु जी इस प्रकार का हस्ती हस्ती का आशय ये था कि बुढ़िया के कारण उसका पानी गंदा नहीं हुआ बल्कि तुम लोगों के पापों से ये गंदा हुआ तुमने उसमें ऐसी भावना की शुद्र की भावना जो भगवान का भजन करता है वो कदापि शुद्र और शुद्राणी नहीं हो सकता तुम्हारे गुरु जी का विचार ठीक था तुम लोगों ने गुरु का निरादर किया और अपमान किया और अवहेला की इसलिए तुम उस स्वर में गए तुम्हारे स्पर्श से स्वर का पानी गंदा ये दुनिया की वजह से नहीं यदि उन्होंने ऊपर से ये बतलाया कि बुढ़िया के चरण को धो करके जब वह पानी जब इस सरोवर में डाल दिया जाए तो पानी नहीं बदलता सब कुछ में उनको तो पहले ऐसा मान नहीं था किंतु फिर भी उसके पैर को धो करके रामचंद्र जी के कारण से और सरोवर में डालते ही पानी स्वच्छ है भक्तों में नीच जाति इत्यादि की भावना कदापि नहीं रखनी चाहिए स्मार्ट ब्राह्मण लोग स्मार्ट जो ऋषि होते हैं वो लोग किंतु ऐसा ही जाति पाति का विचार उन भक्तों में भी रखते हैं भगवान में भी रखते हैं शायद वो लोग रामचंद्र जी का जूठा भी नहीं खा सकते थे क्यों कि रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और कृष्ण ग्वाला थे बहुत से ब्राह्मण लोग कृष्ण को भोग भी नहीं लगा क्योंकि वो जाति के ग्वाला थे ब्राह्मण होते तो लगा लेते इसलिए शालक राम की पूजा करेंगे कृष्ण राधा जी की पूजा नहीं करेंगे बहुत से उत्तम ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं पढ़े लिखे विद्वान लोग जो किसी को गुरु नहीं बनाते क्यों नहीं बनाते अरे हम ब्राह्मण हैं सबके गुरु और मैं किसको गुरु बना तो तुम्हें क्या हो जाऊंगा इसलिए जीवन के अंत तक गुरु नहीं बनाते और अंत में नीचे चलते केवल कुल का और वर्ण का अभिमान रखना ये भी एक समाप्त है इसलिए इसको छोड़ करके अपना आत्म मंगल करना चाहिए सभी जितने जीव है सभी भगवान के अंश हैं इस पर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज इसलिए भक्तों में कभी भी जाति बुद्धि इत्यादि नहीं रखना चाहिए ब्राह्मण स्मार्ट थे खड़े थे उन लोगों ने अरे कहां ये सन्यासी उत्तम चिंता वैष्णव ब्राह्मण और कहां ये शूद्र और ये राजा गंभीर और दोनों मिलकर के यहाँ लोट टूट रहे हैं और रो रहे हैं आंखों से आंसू की धारा गिर रही है उनके समझ में कुछ नहीं आया उनका शूद्र और ब्राह्मण और सन्यासी बस यही पता है सोच करके जब कुछ नहीं मिला उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे महाप्रभु जी ने कहा आज देर हो जाएगी अब भी काम मिल जाएगी और हम भी अपना संध्या आने दोपहर करके बीच काम कर इसमें एक ब्राह्मण आ गया ब्राह्मण ने कहा महाप्रभु जी को आज निमंत्रण आपका हमारे घर पर है महाप्रभु जी ने इसे स्वीकार कर महाप्रभु ब्राह्मण में भी जो भक्त रहता था उसी के घर में जाया करते या उसके फल का देने से वो कुछ नहीं कर रहा। तीसरे लोगों का जो विश्व में अत्यंत आसक्त है, ऐसे लोगों का कभी भी कोई अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, बहुत सावधानी कर रहे। हमारे रूप सनातन भी ऐसे ही रहते, विषय लोगों का अन्न हम नहीं दे सकते। विषय लोगों का अन्न लेने से चित्त मलिन हो जाता है और मलिन चित्त होने से भगवान का भजन नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु कुछ ब्राह्मण का निमंत्रण किताब लिए चले गए। महाप्रभु कह रहे हैं महाप्रभु पहुंचे जाए। महाप्रभु जी ने कहा साथ हम भट्टाचार्य कहिदास कुमार जी हूँ, तुम्हारे लिए तो मोरे कहिदास है। साथ हम भट्टाचार्य जी ने हमको जब मैं पुरी से चला तो हमको बताया आपके गुरु परम भगवत भक्त हैं और रसिक भक्त हैं। मैं रामानंद को पहले नहीं समझ सका, किंतु जब से आपकी कृपा हुई तब से अब मैं उनको समझ रहा हूँ। आज विश्व में उनके समान परम भक्त और रसिक भक्त और ब्रज के भावों को लेने वाले भक्त विरले हैं, उनके समान नहीं। इसलिए आप जाए तो उनसे जरूर मिले मेरे गाने तमाम उनकी बातों को सुन सकते। मेरे यहाँ बस आया हूँ आपसे मिलने के लिए। कुमार जी के बारे में भालो भाई अन्य आके पाई सर, अन्य आके ही आपका दर्शन मिल गया। मैं फिर चीज को जाता था भगवान की कृपा से संतों का मिलना बड़ा दुर्लभ है, किंतु पूर्व जन्म का संस्कार का अनुयासी अध्ययन का संग हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं होता। साधारण लोगों के लिए वह सब बड़ा अधिक होता है। राय का हिसाब हम करेंगे। जी ने कहा कि महाप्रभु जी हमको साधन जी हमको अपना सेवक जानते हैं और परोक्ष वो नहीं है यहाँ, तो भी चाहते हैं कि इसका कल्याण हो, इसलिए परोक्ष रूप में आप ही के पास हमको भेजा। मैं आपसे मिलने में और आपकी कृपा को प्राप्त करने में उन्हीं को कारण समझा है, उन्हीं के कारण से यह हुआ है। तुम्हार दर्शन आज सफल भाई मोर मन से आज मेरा सफल जीवन हो गया। आप जैसे व्यक्ति को मिले रायानंद साथ हम तुम्हार कृपा तार के चिन्ह अस्पृश्य अस्पृश्य ले मैया हरी यहाँ पर आपने के अभिमुख के अस्पृश्य मैं शुद्ध इत्यादि सुने लगने तो भी आपने कृपा करके हमको स्पर्श किया और आलिंगन दान किया। ये आपकी कृपा शुद्र किसके कारण है? शुद्र नहीं राजकाज में राजकाज में रहने के कारण अपने को शुद्र समझने में भी किंतु जाता नहीं। ऐसा क्यों होता? प्रेम स्वरूप ये प्रेम संबंध जिसको प्रेम होता है वो अपने को दीन ही नहीं समझता। सेना कति सुनी के न सरोवरि सहित सुनना अमानी नामान देह सिर्फ लिंग ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। जिसको भक्ति होगा वो जरूर अपने को दीन ही समझेगा, नीच समझेगा। ये भक्ति का ही स्वरूप है। क्यों? अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है जब स्वरूप एक छोटा सा पार्टिकल पदार्थ वो लोग समझते हैं। और साधुओं के संग के लिए सब समय लालायित होते हैं, इसलिए दिन दिन बिना दीनता के भक्ति नहीं मिल सकती, न वैष्णवों का संग हो सकता, उससे लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब दीन होंगे तभी ये उठाया जा सकता है। कहां तुम साक्षात ईश्वर नारायण, कहां आप नारायण साक्षात है और कहां नहीं राज के रूप विषय ईश्वर। कैसे ये जान लिया गया साक्षात नारायण? दो विषय, एक तो सन्यासी को सभी लोग नारायण के समान समझते हैं, नारायण नमो नारायण क्या। दूसरी बात आकृति और प्रकृति से पीछे बतलाएंगे। आकृति और प्रकृति से, आकृति माने रूप और प्रकृति माने स्वभाव। महाप्रभु जी का आगे बतला के प्रकांड शरीर कमल लोचन प्रकांड शरीर। प्रकांड में मनुष्य अपने साढ़े तीन हाथ का होता है अपना शरीर होता है साढ़े तीन साधारण पौना रहे छोटा रहे बड़ा रहे अपने हाथों से तीन हाथ का
साढ़े तीन हाथ।
माँ प्रभु जी या भगवान के जितने अवतार होते हैं सभी चार हाथों और उनका हाथ कहाँ तक जाएगा अजान लंबित यहाँ तक सबका जाए हम लोगों का यहाँ तक रहेगा किंतु भगवान की भुजाएं बड़ी लंबी वो अपने घुटने घुटने में क्या कर घुटने तक वो चली जाए अजान लंबित नग्रो और अंगों की हस्वता और दीर्घता शास्त्र के अनुसार में होती है महापुरुषों के कौन कौन से अंगों के छोटे होंगे कौन कौन से विस्तीर्ण होंगे जैसे बस्तक से विस्तीर्ण है ललाट विस्तीर्ण कमर पतली होगी नासा उन्नत होगी आंखें कमल के समान बड़ी बड़ी हैं ये सब इसके लक्षण है बहुत से मात्र में उन लक्षणों को शास्त्र तो ये जानते हैं उसमें उन्होंने मार किया कि लंबी लंबी पूजाएं हैं शरीर भी चार हाथ का है अत्यंत सुंदर है सुगठित है और प्रकृति मैंने क्या बड़े दयालु इतने दयालु हम जैसे व्यक्ति को जो छूना नहीं चाहिए उसे और इनके देखने के ही ब्राह्मणों को प्रेम उत्पन्न हो गया उनके भी आंखों में आंसू आ गए ये साधारणों को नहीं होता है ये भगवान का विशेष गुण है जहाँ देखे ले ऐसे कृष्ण प्रेम ऐसे दयालु हैं कि पशु पक्षी के पतंग भी महाप्रभु जी को या कृष्ण को देख करके उनको यहाँ तक की लता होती है लताएं कृष्ण के छोड़ करके और कौन सा अवतार ऐसा है जिन्होंने लताओं को पताओं को भी प्रेम पर एकमात्र कृष्ण का ही अवतार है इसके बाद में ये लताओं को भी प्रेम हो जाता है जिधर जिधर से रास्ते से जाते हैं गए हैं आज भी वहां पर हम लोग जाते हैं जब तो देखते हैं अपूर्व भाव बंगाल में वह पद्मजी पद से वो समुद्र को गए थे और जहाँ से लौटे हम लोग 24 पटना इत्यादि स्थानों में मेदिनीपुर में फलदा इत्यादि स्थानों में जाते हैं देखते हैं वहां पर आज भी स्त्री पुरुष सभी बड़े भक्त होते हैं हम लोग के मध्य में अधिकांश जितने लड़के थे आए हैं उधर के सब रहने उधर जब जाते हैं गुरु जी जाते थे उनके साथ में हम लोग जाते थे 10-20-25 सन्यासी ब्रह्मचारी सब लाल लाल कपड़े सब चलते थे उनके साथ ऐसी प्रचार में तो इन स्थानों में हम लोग जाते थे तो गुरु जी की अगवानी करने के लिए 40-50 मृदंग और शंख स्त्रियां चारों तरफ में शंख बजा रही है और हरियाल और घंटा बजने लगे और हरी ध्वनि सब करने लगे इस तरह से आंखों से आंसू आ जाते थे ये सब सुन करके एक साथ में 50 मृदंग बजे ना और उसका पिछला भाग मालूम होता कि मेघ गर्जन कर रहा है अपने आप हृदय नाच उठता है अभी भी महाप्रभु जी इस स्थान से गए थे सुंदर ऐसे भक्ति की भावना अभी भी ये देखती कौन सा भाग भाग जैसे चक्रती है काशी नगर है इसी सब रास्ते से होकर के सब ये गंगा के किनारे किनारे तो जहाँ पर कीड़ा भोजन हुआ था हनुमानी हाथी हम अभी भक्ति के सब सोच करते ये सब है महाप्रभु जी की भगवान के विशेष पद में उन्होंने लक्ष्य किया कि ऐसे ही ये दयालु में हमारे अंदर में भी कभी इतना प्रेम नहीं आया जो आ जाए और इन ब्राह्मणों को जो समाप्त थे उनके अंदर में भी ऐसा आ गया इसलिए तो मालूम पड़ता है ये तो आकृति और प्रकृति से ये भगवान है तुमने हमसे कोई भेदभाव और घृणा नहीं की मोर एक पक्ष ना कर ये घृणा भेदभाव मोर दर्शन तुम्हारा भेद नहीं सकता हमारा दर्शन और पद तो वेदों में नहीं सिद्ध किया गया है
किंतु आपने उसकी बात न मान करके हमको ये सबरी का सबरी से पुलिंद कन्या दिल्ली का स्पर्श इत्यादि नहीं करने और उसमें भी वो इसलिए ऋषियों का समुदाय जा रहा था और उसके गुरु थे मातंगरी इसकी इच्छा हुई कि मैं जाऊं थोड़ा सा सुनिए ये लोग क्या सत्संग करते हैं। तो वो बहुत दूर से जा करके दंडवत प्रणाम ऐसे करके साष्टांग मिट्टी में उसी दिशा में बहुत दूर से और वहीं पर सोई रह गई जब तक करी हरी कथा होती। इसके बाद में हरी कथा समाप्त हो गई ऐसे वो करती थी और जो प्रतिदिन जिस रास्ते से साधु संत लोग जाते थे वहां रही थी उसको झाड़ती थी यहाँ तक कि अपनी केसों से झाड़ती थी और गुरु जी के लिए गुरु जी मन ही मन मान लिया था उनसे संबंध नहीं था उनकी बात तो दूर से सुनी थी किंतु अपना गुरु बना लिया मन ही मन में और लकड़ी हवन के लिए उनके आसन के लिए कहां कहां से सूखी लकड़ी चुनकर गठरी बांध कर और रात में लेकर के पास में सीख दे जैसे यहाँ से उठा लेते इन लोगों ने ऋषियों ने कहा कि एक वहां पर आती है दिल्ली आप उसको मना कर दीजिए अस्त में मत प्रवेश करें वो अस्त में आ जाती है वहां आती नहीं थी दूर आप उसको मना कर दीजिए ना आप नहीं कहेंगे हम लोग मना कर देते हैं ऋषि तुम्हें बुला रहे हैं जब ये लोग जा करके किसी उनमें से तो कोई एक सेवक होंगे अच्छे उन्होंने जा सकते उसे आपको बुला रहे हैं अरे मैं कैसे वहां जाऊं मैं तो कुछ क्या डाल कभी आपको बुलाई नहीं वो गरीब दूर से जाकर के प्रणाम किया बड़े आदर के साथ ऋषि ने वहां पर बैठे रोज प्रतिदिन आना और यहीं पर बैठ करके हरी कथा सुनना इधर नहीं ये लोग बैठेंगे तुम यहीं पर बैठना नहीं करते बैठ करके सुनो ऋषि लोग पड़े विरोध किया इसका सभा में ही उतर हम लोग ब्राह्मण हैं आपके शिष्य हैं यहाँ पर स्त्री और स्त्री में भी शूद्र कैसे आ सकती है सुनने के लिए हाँ अभवित हो गया ये अब तो गोबर से भी पहुंचना चाहिए आप इसको मत बताए मैंने कहा कि यदि आप लोगों को आपत्ति है तो आप लोग मत आइएगा किंतु ये जो है इतना बड़ा भाई है सुना बस वहां से कुछ रह गए और बाकी अधिकांश जितने से मूल सकते उन्होंने अपना स्थान उनको दे दिया सबरी को और कहा कि राम तुमको यहाँ पर दर्शन देने के लिए आएंगे इन लोगों को दर्शन नहीं देंगे ताल बहाना बना देंगे और तुम भक्ति का अतिरिक्त कुछ मांग मत मांगो और तेरी जूठा भी यहाँ पर आकर के खाएंगे तुम यही पर जमे रहो अब मेरा परलोक जाने का समय होगा बस ऐसा करके शरीर को छोड़ करके और अपने दिव्य शरीर से वैकुंठ स्थान को चले गए और वो आश्रम उसी को दे दिया सब पीछे से रामचंद्र जी तो वहां पर इस सब का विचार नहीं वहां पर आत्मतत्व का विचार होता है जो उनको विचारों को ग्रहण करता है सभी लोग इन विचारों को नहीं लेंगे जिनका पूर्व जन्म का संस्कार है वो लोग इन विचारों उन्हें तो किसी को नींद आएगी जैसे बहुत से लोग ब्रह्मचारी लोग सो रहे हैं कोई दूसरा भी सो रहा है किसी के समझ में नहीं आता है और जिसके समझ में आएगा ना जिनका तो विजय मुका संस्कार है महान स्वभाव ये सारी से पामौर नीचे का जना ही का बेजान अंध महान तो किसको कहते हैं सनातन गोस्वामी ने महान महान शब्द की टीका की है काम का श्रीमद भागवत में के श्लोक है महत विचलना भगवत और एक और है श्लोक महत विचलना और
महान सबसे खास
ये दोनों श्लोक पार्लर एक समान है। क्या कह रहे हैं महाप्रभु को, ये बहुत विकलना। महाप्रभु जी ने कहा कि हम आपके लिए आए हैं, आपके दर्शनों से, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था आपका दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं आया। अब उसका ये जवाब ये दे रहे हैं, नहीं अच्छी बात नहीं। महत्व का स्वभाव ये है, अपना कोई कार्य नहीं है तो भी दूसरों को कृपा करने के लिए वो चलते हैं। इसलिए यहाँ पर करें महत विकल्प। महत मैंने क्या है, उसी की सनातन को सामने क्या रहते हैं, भगवत निष्ठ भगवत भक्ति परायण व्यक्ति को महत्व। महत कौन है, महान
हम सब
संसार में सबसे बड़े महान कौन है, कृष्ण भगवान है। उनको हृदय में धारण करने वाले जो हैं वो महत्व, उनके प्रति जिसकी प्रीति हो स्वाभाविक रूप में वो महान है, अन्यथा वो कोई भी महान नहीं। महत्व अपि महियान अणोर अपि अन्यान, भगवान कहते हैं महान से भी महान है, गुणों में भी सब विचरण सबकी सामर्थ्य सब। ऐसे महान पुरुष को, महान भगवान को अपने हृदय में धारण कर, उनके प्रति जो प्रीति रखता है वही महान है, दूसरा कोई भी महान नहीं हो सकता। आजकल इसका विचार नहीं करते, आजकल विचार करते हैं जिसके पास में थोड़ा सा ऐश्वर्य हो गया, पद हो गया, धन हो गया, वो महान हो गया, किंतु इससे बल्कि वो गिर गया। जिसका चित्त भगवान के पास है, भगवान को प्रेम करता है, या प्रेम उसी संपत्ति जिसके पास में है, वो है। ऐसे जो महान पुरुष हैं, महत विचलनम उनका भ्रमण करना, चलनम विचलनम विशेष रूप से चलना, वो किस लिए चलते हैं, अपने उसके लिए जाते हैं। जैसे किसी से कोई हमको दे दो, अरे वो तो आत्माराम है, उनको जरूरत नहीं, उनका तो पेट अपने भर जाएगा जहां से, इसके लिए नहीं जाते। अपने किसी स्वास्थ्य के लिए जाएंगे नहीं, लेना गृहिणा दीन के तथा निर्देश आए, जो मनुष्य है गृही है, मनुष्य में भी जो गृही है और गृहों में जो दीन है, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण करने के लालसा से ही वो जाते हैं उनके घर, अन्यथा नहीं जाते, उनका कल्याण करने के लिए जाते। निश्चय का मैंने दो चीजें होती है, एक प्रेयर एक प्रेयर। प्रेयर उसको कहते हैं अपनी आवश्यकता के लिए जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं, अपने धन के लिए या जो धन है तो उसकी रक्षा के लिए जो प्रार्थना करते हैं उसको कहते हैं प्रेयर ना? और श्रेय कहते हैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो कुछ किया जाता है उसको कहते हैं श्रेय। महापुरुषों का श्रेय और प्रेय दोनों एक होता है ना? वो जो कुछ प्रार्थना क्या करते हैं, भक्ति की, भक्ति ही कल्याण है, इसलिए श्रेय और प्रेय उनका दोनों एक। साधारण लोगों का ये अलग अलग होता है। तो जो अपने कल दूसरों जीवों के कल्याण के लिए भगवत भक्ति को प्रदान करने के लिए, उसको उस घर में मोड़ने के लिए पीछे, किनको, एक तो मनुष्य, उसमें भी गृहिणी, गृहिणी माने गृह में फंसे हुए जो व्यक्ति, गृह में फंसे हुए माने स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु जमीन जायदाद संपत्ति पशु बगीचे, ये सब है विषय। इनके में जो फंसा हुआ है वो गृह है, जो फंसा हुआ आसक्त नहीं है उसमें रहता हुआ भी गृह नहीं है, ये भी तो घर है। इसलिए हम लोगों को भी गृह कहना चाहिए। महाप्रभु जी भी तो कपीत में रहते थे, बड़े बड़े संत लोग कसूर के अतिरिक्त और कहां रहेंगे, तो वो गृह नहीं। पहले तो गृहिणी चाहिए, गृह के लिए, गृहिणी के बाद में बाल बच्चे चाहिए, धन संपत्ति होनी चाहिए और उसमें आसक्ति चाहिए, तब वो गृहिणी। ऐसा आसक्त हो गया जो भगवान का स्मरण नहीं, दो मिनट के लिए समय नहीं होता, दस मिनट के लिए समय नहीं, जब समय भी होता तो इतना भी मान, मैं समाज का इतना बड़ा भारी व्यक्ति, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए मैं जाऊं और उनके साथ में एक आसन पर और नीचे बैठूं, ये मेरे लिए संभव, मैं इतना बड़ा भारी विद्वान जानने वाली। इसलिए यहाँ के जो लोग धर्म कर्म नहीं जानते किंतु है धनी, वो लज्जा के दर्शनी, उन लोगों में एक समान में कहते हैं, यहाँ पर बहुत से धनी वाले आदमी है, उसमें दो एक तो आ जाते हैं किंतु अधिकांश नहीं जाते, इन सब न किसी भी कथा में जाएंगे, मां उनको ये सबसे ऐसे जो गृह दिन मैंने उनको कोई पूछता नहीं, जो कोई जिसको नहीं पूछता, कोई आश्रय नहीं रह गया, सब समय दुखियां क्या करेंगे, एक औलंबन तो होना चाहिए, चलो भाई जान वहां पर जाकर के कुछ समय अपना डालें, कुछ अच्छी अच्छी बातों को सुने, पैसा भी नहीं दे, प्रणामी मेरे कहते हैं भाई कथा हो जाएगी तो शाम को प्रणामी दे देना, ये भी नहीं मान, उनके कथा का आदि और आरंभ भी नहीं है, जो पूर्णाहुति के दिन में भी कुछ दे देना भी नहीं है, कुछ चढ़ावा हो जाए, रुक्मिणी का विवाह भागवत जब होता है सबका, रुक्मिणी का विवाह
बामन देव का भी
और बामन देव का आविर्भाव, और रुक्मिणी को जब पुत्र होता है या शाम, उस समय में बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं और उत्सव का वो सब सामग्री कौन देता है,
भागवत
नंदोत्सव भी होता है वहाँ, तो ये सब दीन जो है कहीं जिसका आश्रय नहीं है, ऐसे लोगों को कृपा करने के लिए जो आ नहीं सकते हरी कथा सुनने के लिए, बाबा की तरफ में रुचि नहीं है, ऐसे दीन गृही जो मनुष्य है निश्चेता का कल्याण करने के लिए, हे भगवान आप जैसे महत् व्यक्तियों का यहाँ पर आना होता है हमारी, ये कह रहा है कौन, नंद बाबा कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, गर्गा का, किस समय कह रहे हैं, कृष्ण और बलदेव का नामकरण संस्कार में, जब वो उन्होंने जय बक्सदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा जी कह रहे, अच्छा देखो नंद बाबा गृही है दीन है न कि कौन से, अच्छा गर्गाचार्य का सौभाग्य बड़ा है ना, नंद बाबा का सौभाग्य, गर्गाचार्य लाख जन्म में भी नंद बाबा की क्षमता नहीं करेंगे, उनकी चरण की धूलि होना भी बड़ा कठिन है, जिनके गोद में कृष्ण सब समय खेलते हैं, लालित होते हैं, पालित होते हैं, चुंबन करते हैं, इनका यह सौभाग्य मिलेगा, नाम करने के समय में उन्होंने कृष्ण का हाथ देख करके अपने हाथों में लिया, सांप गए बात कृष्ण का, और समझने की आज हमारा यह पूर्वताई करना, आज हमारा सार्थक हो गया, ये प्रभु का खुलासा स्पष्ट हो गया, वो जानते हैं कि ये भगवान, ये जसुदा इत्यादि नंद बाबा, ये सब भगवान का मान, महाभक्ति कृष्ण भगवान ने बड़े प्रेम से अपना लाल नेपाल समझते हैं, इसलिए वो कहते कि हम लोग गृही हैं, संसार में फंसे हैं, दिन ही है, आप जो गर्गाचार्य हैं, आप तो बस देव जी ने भेजा, आज हमारे ऊपर में उनकी बड़ी भारी कृपा हुई और आप जैसे महान ये व्यक्ति यहाँ पर, महत् व्यक्ति आपका यहाँ, आज हमारा कल्याण हो गया, हम तो ज्यादा भवे तंग समागम, यदि संसार में भ्रमण करते साधु का संग हो गया, समझो आज हमारा जन्म सार्थक हो गया और हमारा अब मुक्ति का दिन संसार से अब हमारा कल्याण, ऐसा समझ, बिना ऐसा हुए साधुओं का संग कभी कदापि हो नहीं सकता। यहाँ पर एक प्रश्न और होता है, प्रश्न सुना है महाप्रति कदन, अच्छा उसको पीछे बतलाएंगे और इसका एक और अर्थ बतला, मान ले कि कोई गृही व्यक्ति बीच में फंसा हुआ है और बड़ा दुखी है, जब महत व्यक्ति उसके पास में जाएगा तो उसके कुछ लाभ उठाएंगे कि नहीं, कुछ सुकृति तो हो सकती है किंतु उनका परम मंगल नहीं होगा, क्योंकि उनको समझेंगे नहीं, उसके बातों को आदर नहीं करेंगे और जो वो कहेंगे उनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका अर्थ इस रूप में यदि किया जाए, कैसे किया जाए, समस्त जन्मों में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ, इसमें साधु संग हो सकता है, भगवान की तरफ में बुला जा सकता, किंतु यदि वह व्यक्ति दीन हो, दीन माने को पूर्व जन्म का संस्कार से किसी अच्छे कुल में आया हुआ है, कौन सा व्यक्ति पूर्व जन्म में जिसके संस्कार अच्छे थे, वैष्णव का उसे संग हुआ किंतु साधना पूरी नहीं हुई, उस समय में श्रीमतान जन्म होता है, ऐसे व्यक्तियों का जन्म उसके कुल में और न धनी न गरीब मध्यम कुल में और पवित्र कुल में उनका जन्म होता है, उसी नाम श्रीमतान के उसी नाम मैंने पवित्र धर्म जिसमें मान मछली प्यार दुष्कर्म झूठा ये सब नहीं सब ऐसे की अस्थिमतान कुछ धनी नहीं, खाने पीने की भी कमी न हो, ऐसे घर में जहाँ पर की भक्ति भक्त भगवान आते हैं वहां पर घर, फिर उनके संपर्क से ऐसे साधु महात्मा थे तो फिर वो ऊपर साधु संघ के लिए एक चीज बहुत जरूरी सदैव द्रवित होना चाहिए और दीन ही समझ, साधु आए ना बस उसके खड़े हो जाओ, इसलिए दीनता तो अंतर तो होनी चाहिए, तो करके खड़े हो आइए कथा लिए बैठे पानी पिए पानी डाल दिया कुछ हरी कथा कर, मैं बहुत दिनों से संसार मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, अच्छा बतलाइए तो ब्रज किसको कहते हैं, हमने सुना है कि ब्रजरस नाम की कोई चीज, अच्छा ये ब्रजरस किसको कहते हैं, ऐसा सब दिन हाथ जोड़ दिया गले में ये जब तक दिन नहीं होगा ना तब तक साधुओं को नहीं समझेगा, उनसे ऐसा पर प्रश्न नहीं होगा, इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि मैं दीन ही हूं, कौन सा काहिन न मिला वो धनी मानी थी पवित्र उनका था किंतु दीनहीन हो रहे हैं, इसलिए भक्ति है इसलिए संस्कार है, इसलिए जिनके हृदय में कुछ संस्कार होगा और उनके घर में संत जाए तो उसका लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा बड़े बड़े भगवान भी आ जाएं खुद और जिसे लोगों के घर में जाएं वो आकर नहीं करेंगे, साधु संतों की तो बात क्या है, इसलिए कुछ संस्कार होना चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं दीन हूं मैं गृही हूं आप हमारे कल्याण के लिए आए, ये तो हुआ, इसलिए पहले अर्थ की अपेक्षा यह अर्थ अच्छा है कि जिनमें संस्कार है जिनका हृदय पवित्र है जो अपने को दीन ही समझते हैं, जैसे सनातन रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी रघुनाथ दास दीन ही समझते हैं, विदुर जी अपने को कैसा समझते हैं दीन ही समझते हैं, उद्धव जी अपने को दीन ही समझते हैं, चरण गोपियों की चरण की रज बनना चाहते हैं, या रज अपने मस्तक बताना, ऐसा संस्कार नहीं होने से साधुओं के संग का प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कर अच्छा मान लिया कि यहाँ तक तो हुआ। और एक प्रश्न ये उठता है महत्व चलना, ये महत्पुरुष ये भगवान के लिए आया है कि भक्तों के लिए आया है, उदाहरण तो है गदाचार्य भक्त हैं ये नंद बाबा के घर में गए हैं, नंद बाबा उनको कहें भक्त के प्रभो आप महाभागवत हैं, महाभागवत किसको कहते हैं, विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ
विपत्ति आने पर भी चित्त चंचल न हो भगवान के और विश्व ब्रह्मांड की समस्त संकट से मिल जाने पर भी जिनका चित्त भगवान के चरणारविंद से तनिक भी दल ऐसा विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाने पर भी उसकी भक्ति का तनिक भी कुछ नहीं है उसी साथ उसका संपूर्ण सत्यानाश हो जाने पर भी उनका विचलित नहीं होते हैं भगवान भक्ति जैसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया चित्त अभी बस उन्हीं की कल्याण की कमी ऐसे पुरुष जो है महाभागवत है महाभागवत का भागवत में 10-15 श्लोकों में उसके लक्षण दिए गए तो यहाँ पर आप जैसे जो भागवत है ये कौन सा रहा है युधिष्ठिर महाराज जी विदुर के लिए कह रहे हैं विदुर जी परम भागवत है और युधिष्ठिर महाराज जी भी परम भागवत है महाभागवत को परम भागवत ही समझेंगे दूसरा विषय कैसे समझेगा इसलिए उसके लिए आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थ बनाने के लिए आप तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं ना? अच्छा और दोनों श्लोकों के द्वारा ये समझा जाता है कि भक्तों के लिए ये श्लोक है तो ये रामानंद जी सचमुच में इनको भक्त मान रहे हैं ना भगवान मान रहे हैं
भगवान
तो फिर ये भगवान का कोई श्लोक कहते हैं ये भक्तों का श्लोक क्यों कहा इसलिए कहा जब भक्तों का ही इतना प्रभाव है भक्त लोग कहीं भी किसी भी गृह व्यक्ति के लिए तो उनका कल्याण करने के लिए जाते अपने कुछ लाभ के लिए नहीं जाते वो अपने में पूर्ण होते हैं वो कुछ अपनी भक्ति का अंश उनको देकर के किसके कृपा होता है तो भगवान की तो बात क्या इसलिए यहाँ भक्तों के माध्यम में छोटे में ही बड़े का दर्शन दूसरी बात आप भगवान होकर के भी भक्त के अवतार के रूप में आप यहाँ पर आए इसलिए उनकी भक्त के रूप में ही कारण जब इतनी आपकी इस रूप में महिमा है तो उस रूप की नजर महिमा कितनी होगी इसलिए यहाँ पर भक्त भाव से ही भागवतों की भी वंदना यहाँ पर कर रहे हैं जब उनका ऐसा प्राचीन काल में ऐसा समझा जाता है जिसके घर में ऐसा क्षण परम भागवत वैष्णव जिस घर में नहीं आता जाता है वो भगवान भूमि की था भक्त लोग भी ऐसे भक्तों के पास में जाया करते थे गृह व्यक्ति और उनको दीपना कराते थे भगवान का भजन करने के लिए आजकल तो जाने पर दरवाजे नहीं वो कौन डॉग होता है ना वो रख देते थे बड़े बड़े चपरासी ऊपर रखे देखो सभी कोई आ जाए कोई बात नहीं चोर डकैत आ जाएगा तो स्वागत करना किंतु टीकीधारी मालाधारी और टीकाधारी कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश न करने पाए पहले से एकदम सब तैयार करके वो कुछ मांगने के लिए आएगा और आजकल का साधु समाज भी ऐसा ही पतित हो गया है मांगने की दृष्टि से जाते हैं कल्याण क्या करेंगे उनसे भी गए रहते हैं आप लोग ऐसा नहीं आप लोग उनको स्तुति कुछ कराने के लिए कुछ उपदेश देने के लिए जाए अपने गुरु जी का उपदेश सुना है तीनों की भांति उनको बांट देने के लिए जाएंगे इस भावना से दिन ही होगा तक दांत नहीं तोड़ करके उनके सामने कुछ मांगने मत जाए हमको प्रसाद आदरी दे दीजिए मैं तो ये और चीज नहीं खाता या और कुछ ऐसा है फल हमको दे दीजिए हमको कुछ खाने के लिए दीजिए हमारे कपड़े फट गए हैं दांत नहीं तोड़ करके भगवान उसकी बड़ी व्यवस्था की यदि कोई ठीक ठीक भगवान का भजन करेगा वो लोग सब दे करके अपने को कृपा समझेंगे और उनका ठीक ठीक भगवान और गुरु को अर्पण करके कर्तव्य आप लोग भी संसारी लोग भी जो गृह मर करके भजन करने वाले हैं इन सब आकर्षण को प्रकट करके धीरे धीरे ये सब बहुत सी शिक्षाएं इन सब विचारों के चेतन महापुरुष के उपदेश में ये सब भरा पड़ा है हमारे संग में ब्राह्मण आदि सहस्त्र कजल कुमार दर्शन गवि कहते हैं कि हमारे साथ में हजारों ब्राह्मण आए बड़े बेकर्गे हैं और पुरुष सूक्त
लक्ष्मी सुक्त इत्यादि का उच्चारण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? हजार ब्राह्मण के साथ में किस लिए है और उच्चारण कर रहे हैं? फिर ये सब किस लिए? सलाम के लिए ना? क्या क्या बात? कुछ दक्षिणा मिल जाए। अरे इतनी घर में रह करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ विष्णु सूक्त कर दे तो इनके पास आने की क्या जरूरत है? पुरुष सुख तो भगवान के लिए है, एक आदमी के लिए ये सब करेंगे। किंतु कह रहे हैं ये सब का भी चित्त द्रवित हो गया है आपके दर्शनों से। महाप्रभु जी को कह रहे हैं कृष्ण हरि नाम सुनि सवार सवार अश्रुनयने। कृष्ण नाम सुना, हरि नाम सुना, हम लोग जो आप जो कह रहे हैं हरि बोल कृष्ण 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 है अपना हरे कृष्ण इसे सुन करके और आपके भाव को देखकर के ये भी इनमें संचरित होकर के इनका चित्त गदगद हो गया है। आकृति प्रकृति तुम्हारा विश्व अवस्था, आकृति और प्रकृति में तो तुम्हारा भगवान के लक्षण मिलते हैं। जिले आपको देख करके जैसे चित्त इनका प्रसन्न हो रहा है, गदगद हो रहा है, प्रेम में भी बोल हो रहा है, या हमारा हो गया आपका कटनी से ही हमारे चित्त में प्रेम एकदम भावित हो गया। ये जीवों के संग से नहीं, इसलिए ऐसा मालूम होता है कि आप स्वयं भगवान है, प्रभु कहें, प्रभु का उत्तर देने में प्रभु कहें। तुम्हें महाभागवतोत्तम, आप महाभागवतोत्तम, भागवत ही नहीं महा भागवत, और महाभागवतों में भी उत्तम उत्तम। ये किसके लिए होगा? ये सिद्ध महापुरुषों के लिए सब प्रकार हुई। महापुरुष जी कहते हैं कि आपका आधार नहीं है, उन्होंने तो इनको भगवान साबित किया और ये उनसे उनको ही कह रहे हैं आप महा महाभागवत उत्तम है, महाभागवत उत्तम कुमार दर्शन में सवार द्रवित हूं परिजन। हमारे दर्शन से नहीं, तुम्हारे दर्शन से हुआ। महाभागवत का लक्षण क्या है? अवार महाराज की लागत जो समस्त प्राणियों में भगवान के भावों को अपना जायगा करता है और समस्त जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में सबको देखता है। आत्मनि अपने में भी अपने भाव से, जैसे मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ ऐसे जीव मात्र ही भगवान का सेवक है ये देखते हैं और सबको भगवान के स्वरूप में देखते हैं और भगवान को देखते हैं सत्य हृदय में सब कुछ में, उनको कहा जाता है भागवत। ऐसे लोगों का दर्शन से जीवन की सार्थक हो जाए, बड़े भगवान का दर्शन होना सहज है किंतु इन लोगों का दर्शन होना बड़ा भारी कठिन है। जब किसी प्रकार से हो जाए तो फिर जीवन सफल हो जाए। मल्ले की कथा अमी मायावादी संज्ञा है, महामुनि की कथा मैं तो मायावादी संज्ञा हूँ। मायावादी संज्ञा की थे इसी दिन का करते का उस समय में, जिस समय में महामुनि जी गए उसमें अधिकांश भारत वर्ष के जितने भी संन्यासी होते थे अद्वैतवादी संन्यासी वैष्णव लोग इस तरह से बेच नहीं लेते। महाप्रभु प्रचार की दृष्टि से देखा गया कि यदि मैं सफेद कपड़े में रह सकते तो विश्व में प्रचार नहीं हो, इसलिए आवर्त बन करके उनको प्रचार कर। इसलिए पहले गोपाल मौसरिया किससे? पूरी से दीक्षा लिया और उसके बाद में बेच लिया किससे? इसलिए गुरु गुरु में कौन हुए? ईश्वर पूरी बात भी गुरु है, दीक्षा है। बेच वाला का विचार आचार उतना नहीं लेते किंतु हाँ वो पूज्य होना चाहिए, केवल बेच मात्र आश्रय नहीं लेते बल्कि उन लोग हम लोगों का मंत्र है संन्यास का, वो है गोपियों का वेद भाव मैं नहीं सकता और उन लोगों का क्या है सप्तमति। सप्तमति मैंने क्या होता है? तप त्वम अस्ति, तुम वही ब्रह्म, इसका साधारण और जो शंकराचार्य लेते हैं। इसलिए जब किसी को संन्यास देते हैं कहें तुम यही मंत्र जपना कि मैं भी वही हम ब्रह्मा नहीं सत्तम वही, किंतु वैष्णव भी इसका तात्पर्य लेते हैं क्या सत्म सत्यम अति तुम उन्हीं के सेवक हो, हम लोगों का संन्यास करिए हम उनके सेवक और उन्होंने तुम वही हो। तो महाप्रभु जी ने अपने गुरु जी के कानून में बताया, अच्छा आप इसका कौन सा अर्थ समझते हैं दोनों में से बतलाइए कौन सा अर्थ समझते हैं। देखिए मैं दो अर्थ आपको बतलाता हूं, तुम ही वही हो और दूसरा अर्थ जो वैष्णव करते हैं जो हम लोग का भी प्राय है वह यह है कि तुम उनके सत्सम दासो अति, तुम उनके दास हो। ये कह करके हम इसी भाव पर आपका कौन सा विचार है बोलिए तो मैंने प्रकरांतर रूप में उनको यह मंत्र दे करके और अपना शिष्य बना करके फिर उनसे वैष्णव बना करके तब उन्होंने देख लिया सब समय मर्यादा रहेगी जिनसे शिक्षा लेते हैं गोपाल मंत्र की भी प्रतिष्ठा अधिक
रहेगी
है किंतु मूल है गुरु मूल जिसे दीक्षा इत्यादि प्राप्त हुई और जिससे हमको वो भावना मिली है जिसने भावना दिया दीक्षा दिया दीक्षा मैंने उसने प्रतिष्ठित उस भावना में की इससे इसलिए महाप्रभु अपने को कहें अरे मैं तो सन्यासी हूँ मायावादी क्योंकि आ गई है किंतु आपके दर्शन से हमारा चित्त भी प्रवीण हो गया ये साधारण गुरु नहीं इसलिए आप महाभारत उत्तम है अमित कुमार प्रत्येक इसलिए साधारण हमको हमारा कठिन हृदय शोधन करने के लिए आपके पास वो कहते थे सात भाव ने उनको भेजा था हमको भेजा था हमारा हृदय शुभन करने के लिए और वो कहते हैं कि आश्रमों में भेजा हमारा कल्याण करने के लिए आ रहा है दोनों दूसरों की प्रतिनिधा और दोनों की बात थी अपने अपने दृष्टिकोण से महाप्रभु जी दीक्षित कर रहे हैं उनको लेना है एक भाव क्या वो भी भाव लेना है राधा जी का भाव लेना इसलिए वो महाभागवतोत्तम के लिए नहीं पाया जाए और ये ठीक है कि हमारा कल्याण करने के लिए ये भी ठीक है क्यों महाप्रभु जी ने उनको उसी समय में वो रसराज महाभाव ग्रहण करा करके उसकी उपलब्धि करा करके उनको भी मोहित कर दिया इसलिए गुरु की बात है ठीक है आज यही तक रहे आगे बढ़ते हैं। Thank you.